1960 में कैंसर के लिए एक नई दवाई पर अनुसंधान हो रहे थे जिसका नाम है क्रेबियोजिन। एक मरीज कि जिसे गले में बहुत बड़ी लिम्फोमा की गांठ थी, उसने अखबार में पढ़ा कि इस नई दवाई पर अनुसंधान हो रहे हैं। उसने अपने डॉक्टर को रिक्वेस्ट की कि अगर मुझे आप यह क्रेबियोजिन के इंजेक्शन दीजिए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सिर्फ एक दिन छोड़कर उसे दो इंजेक्शन दिए गए और उसकी गांठ बर्फ की तरह पिघल गई। करीब 6 मास तक वह ठीक रहा। 6 मास के बाद एक दिन उसने अखबार में पढ़ा कि भल क्रेबियोजिन पर प्रयोग हो रहे हैं परंतु इसके परिणाम अच्छे नहीं हैं। अखबार में पढ़ते ही उसे दोबारा गांठ हो गई। जब डॉक्टर को पता चला कि अखबार में पढ़ने से उसे दोबारा कैंसर हुआ है, उन्होंने एक युक्ति सोची। पेशेंट को बुला करके कहा कि देखो भाई, पहले मैंने तुझे जो इंजेक्शन दिए थे वो शुद्ध इंजेक्शन नहीं थे, अब हमारे पास शुद्ध इंजेक्शन आने वाले हैं, अगर वह हम आपको देंगे तो तुम जरूर ठीक हो जाओगे। दोबारा उसे 3 इंजेक्शन दिए गए और उसकी गांठ बिल्कुल पिघल गई। वह करीब 1 साल तक ठीक रहा। आखिरन अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑन्कोलॉजी में रिपोर्ट छपे कि क्रेबियोजिन बेकार दवाई है, इससे कोई कैंसर ठीक नहीं होता है। तो उसे 3री बार कैंसर हुआ और आखिरन इस मरीज का देहांत हो गया। यह बहुत ही प्रसिद्ध किस्सा है जो कई किताबों में छपा है। इससे क्या पता चलता है, किसने उसे ठीक किया? मरीज की मान्यता ने ही उसे ठीक किया, उसके विचारों ने उसे ठीक किया। मन का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। मन डायबिटीज को नियंत्रण में तब रखता है कि जब न केवल हमारा चिंतन हो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मेरे खून में सही मात्रा में इंसुलिन का निर्माण होता है, इंसुलिन का निर्माण होने से ब्लड शुगर भी कम हो रही है, नियंत्रण में आ रही है, जितनी होनी चाहिए उतनी ही यह ब्लड शुगर है, परंतु इस बात पर हमारा निश्चय भी हो, विश्वास भी हो। पहले भी मैं इस बात में निश्चय रखता था परंतु एक घटना हुई तब मेरा निश्चय और भी बढ़ गया, विश्वास और भी बढ़ गया। माउंट आबू में एक डायबिटीज कैंप में कुछ मरीज भी थे और साथ साथ में उनके रिश्तेदार भी आए हुए थे। सवेरे जब उन्हें ध्यान का प्रयोग करा रहे थे तब इस विधि के द्वारा प्रयोग कराया कि किस प्रकार से उनकी पेनक्रियास की ग्रंथि को आराम मिल रहा है, वे स्वस्थ होते जा रहे हैं, सही मात्रा में इंसुलिन निर्माण होता है और उससे उनकी ब्लड शुगर कम होती जाती है। भले एक गलती थी परंतु गलती से भी सीखने को मिला कि जब यह सारा प्रयोग पूरा हुआ उसके पश्चात एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उन्हें तकलीफ होने लगी, उन्हें पसीना आने लगा, चक्कर सा आने लगा, तो हम इस निर्णय पर आए कि शायद उनकी ब्लड शुगर कम हो गई है। तुरंत ही उनको ग्लूकोज दिया गया और वो फिर से स्वस्थ महसूस करने लगे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वह प्रोफेसर को तो डायबिटीज नहीं था, वह तो बिल्कुल स्वस्थ थे, परंतु फिर भी उन्होंने यह सूचनाएं दी, विश्वासपूर्वक यह सूचनाएं दी कि मेरा ब्लड शुगर कम होता जा रहा है, और सचमुच उनका ब्लड शुगर कम हुआ जिसके कारण उन्हें तकलीफ हुई। ये गलती इसलिए है क्योंकि वास्तव में यह सूचना देनी चाहिए कि मेरी ब्लड शुगर जितनी आवश्यक होनी चाहिए उतनी ही रह रही है, कि जिससे मैं स्वस्थता से अपना कार्य कर सकूं। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। साथ साथ में हमें एक चित्र भी निर्माण करना चाहिए, क्योंकि जो हम सोचते हैं उसकी करीब 25% इफेक्ट शरीर पर होती है, और जो हम चित्र निर्माण करते हैं उसकी ऑलमोस्ट 75% इफेक्ट होती है। इसलिए चिंतन के साथ साथ हम चित्र भी निर्माण करें तो वह 75% सही असर है वह होगी। और इस चिंतन को और विचारों को रिपीट भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे दो मन हैं, एक है जागृत मन और दूसरा है सुषुप्त मन। सुषुप्त मन में बहुत ही जबरदस्त शक्ति है। जब सुषुप्त मन जागृत हो जाता है और हम ये सूचनाएं देते हैं तो उसकी गहरी असर हो सकती है। और सुषुप्त मन में परिवर्तन लाने के लिए सिर्फ एक बार सजेशंस देने से गहरी असर नहीं होती, उसे अगर बार बार रिपीट किया जाए तो उसकी बहुत ही गहरी असर होती है। इसलिए दिन में कम से कम दो बार, जिस विधि का प्रयोग हम आज भी करेंगे उसे दो बार हम अभ्यास करें और वही सूचनाएं उसी विधि से करीब दो मास तक अभ्यास करते रहे। और डायबिटीज में तो हमें प्रतिदिन इसका अभ्यास करना चाहिए ताकि सदा के लिए ब्लड शुगर कंट्रोल में रह सके। सुषुप्त मन को जागृत करने के लिए सबसे पहले हमें शरीर को रिलैक्स कर देना चाहिए, या तो ध्यान के अभ्यास से हम मन को शांत करें, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में सुषुप्त मन जागृत होता है। और एक बार जब मन शांत हो जाता है तब फिर विशेष विधि के द्वारा हम शरीर में भी आवश्यक परिवर्तन ला सकते हैं। जो हम चिंतन करेंगे और चित्र निर्माण करेंगे उसे हम तीन स्टेजेस में बांट सकते हैं। पहली अवस्था है यह चिंतन करें कि मस्तिष्क से आत्मा का प्रकाश सारे शरीर में फैल रहा है, एक एक अंगों में, सारे चेहरे में फैल रहा है, दोनों हाथों में फैल रहा है, चेस्ट में, पेट में, पैरों में, सभी अंगों में यह सुनहरा पीला प्रकाश फैलता जाता है और उन अंगों का शुद्धिकरण हो रहा है। जैसे मैले कपड़े धोते हैं तो किस प्रकार से सारा मैल बाहर चला जाता है और कपड़े स्वच्छ होते हैं, ऐसे ही ये चिंतन करें कि वह सुनहरे पीले प्रकाश से सारे शरीर का मैल है वह शरीर के बाहर निकल जाता है और शरीर वह स्वच्छ हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। और मन जैसे जैसे शांत होता है, शुद्ध होता है, सचमुच शरीर के अंगों में भी वह शुद्धता आती जाती है। इससे जो शरीर के अंग ठीक से कार्य नहीं करते हैं, रिसेप्टर्स जो रेजिस्टेंट हो गए हैं, इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, वह प्रक्रिया ठीक होगी और थोड़ा सा इंसुलिन भी सही काम करने लगेगा। दूसरा स्टेप है कि यही आत्मा का प्रकाश विशेष रूप से पैंक्रियास की ग्रंथि पर पड़ता है। आपको बताया था कि पेट में जो गाजर जैसी ग्रंथि है और जिसकी पूंछ है वह साइड में है, इस पैंक्रियास की ग्रंथि पर भी आत्मा का प्रकाश पड़ता है और बादलों की तरह उसके सारा पैंक्रियास को वह कवर कर लेता है, कि जिससे सबसे पहले तो पैंक्रियास की ग्रंथि को आराम मिल रहा है, क्योंकि डायबिटीज में ये पैंक्रियास की ग्रंथि थक गई है, उसने काम करना बंद कर दिया है। तो जब उसे आराम मिलता है तो वो फिर से चेतनवंत होकर के फिर से उसमें शक्ति आती है और सही मात्रा में वह इंसुलिन निर्माण कर रहा है। यह सोचिए कि त्रिकोण आकार की इंसुलिन की कणिकाएं पैंक्रियास से निर्माण हो रही है और वह रस खून में मिल जाता है और जैसे ही वह खून में मिलता है सारे शरीर में फैल जाता है और सारे शरीर में फैल करके शरीर के सभी अंगों पर वह सही प्रकार से अपना कार्य करता है और जिससे शुगर को शरीर के अंगों में प्रवेश करने का, शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने के द्वार खुल जाते हैं और वह शुगर शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश कर रही है। और जब तीसरा स्टेप है कि जब खून में शुगर आवश्यक मात्रा में ही रहती है तो खून की नलिकाएं भी ठीक से कार्य करने लगती है और खून का भ्रमण सारे शरीर में अच्छी तरह से हो रहा है और यह खून का भ्रमण विशेष प्रकार से ब्रेन में ठीक से होता है, आंखों में अच्छी तरह से खून पहुंच रहा है, हृदय को भी ठीक से खून मिल रहा है, किडनीज को और पैरों को अच्छी तरह से खून मिल रहा है। जब सभी अंगों में खून का भ्रमण ठीक हो जाता है तो अंग भी स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक प्रकार से सभी अंग कार्य कर रहे हैं। ऐसा चित्र निर्माण करें ध्यान के पश्चात। तो आइए हम ये अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम अपने शरीर के अंगों को रिलैक्स करने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि मन और शरीर का गहरा संबंध है। यह विधि कि जिसे कहा गया है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन बाय सेल्फ सजेशन, स्वयं सूचना द्वारा शरीर को रिलैक्स करना। एक व्यापारी थे, वे जूठा दांत पहनते थे। एक दिन जब ऑफिस में बैठे थे, अचानक उन्होंने पाया कि ये जूठा दांत नहीं है, तो कोई संभावना पर विचार आने के बदले उन्हें तुरंत ही बहुत ही अशुभ विचार आया कि शायद वह दांत मेरे पेट में चला गया हो। जैसे ही उन्हें यह विचार आया, वह बहुत घबरा गए, पेट में दर्द होने लगा, पसीना पसीना हो गए। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने अच्छी तरह से उनकी जांच भी की, फिर भी डॉक्टर यह नहीं बता पाए कि पेट में दांत है या नहीं। उन्होंने यही कहा कि पेट में तो दांत नहीं पता चलता है। एक्सरे भी लिया गया, फिर भी यह पता नहीं चला कि पेट में दांत तो नहीं है। डॉक्टरों ने कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई आपके पेट में कहीं भी दांत नहीं है, फिर भी उनका दर्द कायम रहा। यह सभी प्रक्रिया चल ही रही थी, तब अचानक उनके घर से फोन आया। तो असिस्टेंट ने बताया कि ऐसी सीरियस घटना सांप के साथ हुई है। तुरंत ही सामने से उत्तर मिला कि क्या बेवकूफ जैसी बातें करते हो, सांप तो दांत घर में भूल गए। जैसे ही उन्हें यह संदेश दिया गया कि साहब आप तो दांत घर में भूल गए हैं, एक सेकंड में उनका दर्द भी गायब हो गया। यह सत्य घटना में तीन बार मन ने जो सूचना दी उसकी प्रतिक्रिया शरीर ने भी दी। सबसे पहले जब उन्हें यह विचार आया कि दांत मुंह में नहीं है तो शायद वह पेट में चला गया होगा, तुरंत दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर ने समझाने की कोशिश की परंतु उसकी असर नहीं हुई, क्योंकि उन्हें यह संशय था कि शायद डॉक्टर ठीक से मेरे दांत को देख नहीं पाए हैं, उसको ढूंढ नहीं पाए हैं, इसलिए शरीर ने वह दर्द को कायम रखा। और तीसरी बार जब यह पक्का मैसेज आया कि आप तो दांत घर में भूल गए हैं, तो संशय करने की कोई बात नहीं थी, इसलिए तीसरी बार फिर से शरीर ने प्रतिक्रिया दी और दर्द खत्म हो गया। तो इसी प्रकार इस विधि में भी पैर की उंगलियों से सर तक एक एक हिस्से को हम यह सूचना देंगे कि सचमुच वह शांत हो रहा है, वह बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। और जो जो हिस्सा शरीर का रिलैक्स हो जाए, हम अपनी चेतना को उससे विड्रॉ कर ले। हम यह सोचे कि वह हिस्सा है ही नहीं। जब पैर की सब मांसपेशियां रिलैक्स हो जाए, यह सोचे कि पैर एक मृत देह की तरह पड़े हैं, मैं सिर्फ ऊपर के हिस्से के बारे में ही जागृत हूं। और ये रिलैक्सेशन की प्रक्रिया में जो भी अनुभव होते हैं वह अच्छे ही है, डरने की कोई बात नहीं। कुछ लोग इसलिए रिलैक्स नहीं हो पाते क्योंकि उनके मन में डर होता है कि शायद क्या होगा, यह नया अनुभव है। और जब वह डरते हैं तब वह वापस जागृत स्थिति में आ जाते हैं और रिलैक्स नहीं होते। साथ साथ हम थोड़ा सा ध्यान का भी अभ्यास करेंगे। ध्यान का अर्थ है कि एक आंतरिक यात्रा, यह एक अंतर मन की यात्रा है कि जिसमें हम अपनी सही चेतना के विषय में जागृत होते हैं कि किस प्रकार मैं एक ज्योति स्वरूप शांत आत्मा हूं। यह शरीर के सभी अंगों का संचालन करने वाली चैतन्य शक्ति हूं और साथ ही साथ परमात्मा जो भी आत्मा की तरह ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनसे भी मन बुद्धि का संबंध जोड़ते हैं और सर्व शक्तियों के सागर परमात्मा से हम वह शक्तियां प्राप्त करते जाते हैं। परमात्मा शांति के सागर है तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, उनकी शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है। इसे कुछ समय हम ध्यान का भी अभ्यास करेंगे और अंत में जो विधि मैंने बताई उस विधि के अनुसार हम डायबिटीज के नियंत्रण की जो तीन कदम हैं उन तीन कदम का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। भल राजयोग का अभ्यास खुली आंखों से किया जाता है, परंतु आप चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करते करते खुली आंखों से भी ध्यान का अभ्यास करना संभव है। तो आइए कमर को सीधी रख करके बैठे, पैरों की उंगलियों पर ध्यान दे, पैरों की उंगलियों में होने वाली संवेदनाओं पर ध्यान देते हैं। पैर की उंगलियां रिलैक्स हो रही है, बिल्कुल शांत हो रही है, शांति, रिलैक्स, रिलैक्स। शांति के प्रकंपन पैरों के पंजों में भी फैल रहे हैं, दोनों पंजे बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों पैर भी रिलैक्स हो रहे हैं, एकदम शांत और रिलैक्स हो रहे हैं, दोनों पैर बिल्कुल शांत हल्के हो रहे हैं, रिलैक्स, रिलैक्स। कमर से नीचे दोनों पैर एकदम हल्के हो गए हैं, शांत हो गए हैं, रिलैक्स। दोनों पैर डेड बॉडी की तरह पड़े हैं, सांस की प्रक्रिया पर ध्यान ले। जब आप सांस लेते हैं, सांस बाहर आता है, तब जो अनुभूति हो रही है उसी पर ध्यान दे। पेट और छाती जो हिल रहे हैं उस पर भी ध्यान दे। पेट की मांसपेशियां रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आंतरिक अवयव भी एकदम शांत और रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स। शांति के प्रकंपन हृदय को भी मिल रहे हैं, हृदय शांत हो जाता है, बिल्कुल हल्का हो रहा है, रिलैक्स, रिलैक्स। पीठ और कमर के स्नायु भी शांत हो रहे हैं, शांत, रिलैक्स। दोनों हाथ भी हल्के हो रहे हैं, हाथ की उंगलियों में होने वाली संवेदनाओं पर ध्यान दे, वे एकदम हल्के और रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स, लेट गो। दोनों हाथ एकदम हल्के और रिलैक्स हो जाते हैं. रिलैक्स, लेट गो, रिलैक्स. गले से नीचे सारा शरीर शांत हो गया है, बिल्कुल हल्का हो गया है. धीरे धीरे चेहरा भी रिलैक्स और शांत होने लगा है. रिलैक्स, शांति. आंखें शीतल और शांत हो रही है. शांति. दिमाग भी हल्का, बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है. रिलैक्स, दिमाग एकदम शांत और हल्का हो रहा है. रिलैक्स. पैरों की उंगलियों से सर तक सारा शरीर शांत हो गया है. और जिससे पेनक्रियास को भी आराम मिलता है और सही मात्रा में इंसुलिन निर्माण होने से खून की शुगर भी कम हो रही है. जैसे जैसे खून की शुगर कम होती है, खून का भ्रमण सही हो रहा है सभी अंगों में. सभी अंग स्वस्थ होते जा रहे हैं. इस विचार को रिपीट करें कि सचमुच खून में आवश्यक मात्रा में ही शुगर रह गई है, आप स्वस्थ होने लगे हैं. शक्ति का संचार हो रहा है. धीरे धीरे वापस जागृत स्थिति में आते हैं, आंखें खोलते हैं. आप ताजगी का अनुभव कर रहे हैं. प्रतिदिन ऐसे दिन में कम से कम 2 बार अभ्यास करने से हम सही मात्रा में इंसुलिन भी निर्माण कर सकते हैं. शरीर के अंगों में जो इंसुलिन की असर नहीं हो रही है उसे भी ठीक कर सकते हैं. तो आशा है कि आप जो बातें बताई गई है उसे अच्छी तरह से जीवन में अपना करके डायबिटीज पर पूरा पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे. ओम शांति.